सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में कैबिनेट फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने विपणन सत्र 2025-26 के लिए रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लगभग 6% बढ़ाकर 5,650 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है। श्री गोयल ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हासिल प्रगति की समीक्षा की और इसे आगे बढ़ाने का फैसला लिया। इन अहम कैबिनेट फैसलों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। अदिति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
धन्यवाद।
अदिति जी, पहले कृषि क्षेत्र के फैसले की बात करें तो मार्केटिंग सीजन 2025-26 के लिए रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 315 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि कर इसे 5,650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो उत्पादन लागत पर 67.8% का प्रॉफिट सुनिश्चित करता है। कितना अहम है ये फैसला जूट सेक्टर के लिए, इस सेक्टर में जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली फार्मर्स जुड़े हुए हैं उनके लिए?
देखिए, ये जो नॉर्मली जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो पॉलिसी है सरकार की, जैसे मोदी सरकार में ये पॉलिसी काफी कंसोलिडेट हुई है और सारे, आपको पता है, सारे मेजर क्रॉप्स के लिए दिया जाता है MSP, तो जूट भी उसमें से एक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जो MSP का अमाउंट जूट फार्मर्स को 2014 से लेकर 2024 तक मिला है वो 1300 करोड़ है टोटल अगर गिना जाए, और यही अगर उससे पहले कंपेयर किया जाए तो ये अमाउंट 444 करोड़ था। तो 444 करोड़ को कंपेयर करेंगे 1300 करोड़ से, तो हमें स्केल जो है पॉलिसी का वो नजर आता है। और जो इसका ह्यूमन फेस है इस पॉलिसी का, इस डिसीजन का जो आज है, देखिए डिसीजन तो कंटिन्यूटी में है, इसमें कोई नई बात नहीं है। समर्थन मूल्य बढ़ता जा रहा है और सरकार की पॉलिसी है कि सपोर्ट देंगे फार्मर्स को। इम्पोर्टेंट बात यह है कि 40 लाख फार्मर फैमिलीज इस डिसीजन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बेनिफिट करेंगे, और क्योंकि डिपेंड करते हैं जूट की इंडस्ट्री पे और एग्रीकल्चर पे, तो अबाउट 4 लाख वर्कर्स हैं जो इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा, तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
और जो 67% प्रॉफिट बताया गया है जो उत्पादन लागत है उसके ऊपर, ये भी आप बहुत अहम मानेंगी क्योंकि 50% का फॉर्मूला दिया गया है तो उससे भी ये एक्सीड किया है?
हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने पहले कहा कि ये 315 रुपए प्रति क्विंटल की इंक्रीज है प्रीवियस मार्केटिंग सीजन से जो 2024 और 25 का है, तो 315 पर क्विंटल एक अच्छा राइज है। और बेसिकली रॉ जूट पे जो सरकार का MSP है पर क्विंटल, वो 2014 में जब सरकार ने शुरू किया था वो 2400 रुपए पर क्विंटल था, और अब ऑलमोस्ट 5000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है, रॉ जूट की बात कर रही हूँ मैं। तो इसमें जो इंक्रीज है वो इस पर्टिकुलर पीरियड में ऑलमोस्ट 2.35 टाइम्स, ऑलमोस्ट 2.5 गुना हो गई है। और जो आप कह रही हैं कि लागत से ऊपर जो है प्रॉफिट को जोड़कर, यही MS स्वामीनाथन कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसका अहम हिस्सा यही था कि C2+50% की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इनपुट पर 50% प्रॉफिट जोड़कर फार्मर्स को दिया जाए, तो लार्जली इसको मीट करने की ऐसा लगता है कि कोशिश हुई है।
आइए अब सुनते हैं वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा।
इस वर्ष 2025-26 के सीजन के लिए रॉ जूट की MSP लगभग 6% बढ़ाई गई है, अब वो 5,650 रुपए प्रति क्विंटल रहेगी, जो लागत मूल्य से लगभग 67% ज्यादा है।
अदिति जी, आज की कैबिनेट मीटिंग में स्वास्थ्य क्षेत्र और खास तौर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा हुई, ओवरऑल क्या आकलन रहा, स्वास्थ्य में वर्ष 2021 से वर्ष 2024 के बीच प्रगति कितनी संतोषजनक रही, क्या प्रमुख उपलब्धियां रही और क्या आपको लगता है क्यों सरकार ने फैसला लिया कि इसको आगे भी एक्सटेंड किया जाए इस स्कीम को?
देखिए, जो नेशनल हेल्थ मिशन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में पूरा रिव्यू किया गया कि इस मिशन के तहत देश ने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की हैं और हम कहाँ खड़े हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि नेशनल हेल्थ मिशन का जो जन्म है वो 2017 की जो पॉलिसी थी, आपको याद होगा उस वक्त जो पॉलिसी थी जिसको कहते हैं 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी, तो उसमें जो हमारे गोल्स थे, सबसे इम्पोर्टेंट गोल था उसमें कि हम यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर दें। उसके बाद इम्पोर्टेंट गोल था कि जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उनको खत्म करने का टारगेट है। अब 17 के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या था नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए वो हमें COVID-19 पैंडेमिक के वक्त देश को संभालने में, लोगों को संभालने के बहुत काम आए। जैसे कि आज जो अप्राइज किया गया कैबिनेट को, उसमें बहुत महत्वपूर्ण एक बिंदु ये था कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन डोजेस दी गई भारतवर्ष में लोगों को, तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब ये दुनिया भर में सबसे बड़ा स्केल पर इंडिया में कोविड वैक्सीन दिए गए। और ये इसलिए हासिल हो पाया क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत प्राइमरी हेल्थ केयर पे पहली बार भारत ने फोकस किया, जिसके तहत विलेज लेवल पर हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स बनाए गए जिनको अब हम आरोग्य मंदिरों के नाम से जान रहे हैं, वहां पर प्राइमरी हेल्थ वर्कर्स को पोस्ट किया गया। तो कहने का मतलब है कि विलेज के पास ही आप एक कोई ना कोई कम्युनिटी में हेल्प दें ऐसी लोगों को कि लोगों को पहला ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट अपनी हेल्थ, छोटी सी कोई खांसी है जुकाम है तो वहां जाके अपना दिखा सकें और कोई गंभीर बीमारी है तो आगे रेफर हो सके। पहले क्या था कि ये सिस्टम नहीं था और सब लोग बड़े बड़े शहरों में, कोई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुंचता था, कोई एम्स में पहुंचता था, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में छोटी छोटी इलाजों के लिए भी लोगों को आना पड़ता था। तो सबसे बड़ी उपलब्धि नेशनल हेल्थ मिशन की ये है कि प्राइमरी लेवल पर ये जो हेल्थ सेंटर्स बनाकर और 12 लाख इसमें हेल्थ केयर वर्कर्स को जोड़कर 2021 से 2024 में एक एक्सपैंड कर दिया गया हेल्थ केयर के एक्सेस और डिलीवरी को।
जी बिल्कुल, उसके कई हमें केंद्र बिंदु भी आ रहे हैं, स्टेटिस्टिक्स आ रहे हैं। मातृत्व मृत्यु दर जो है वो 1990 के बाद 83% डिक्लाइन हुई है भारत में, जबकि वैश्विक स्तर पर जो डिक्लाइन का रेट है वो 45% है। सो कंपैरेटिवली जो हमारा विस्तार हुआ है हेल्थ सर्विसेज का, जैसे आपने कहा है कि इंक्लूसिव अप्रोच के साथ पूरा हेल्थ सर्विसेज को एक्सपैंड किया गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, ये सारे जो स्टेटिस्टिक्स हैं ये उसी के सूचक हैं।
जी बिल्कुल, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई 2017 में, तो सरकार ने ये निर्णय किया कि पहले हम लोगों का थ्रस्ट रहता था कि बीमार हो गए तो जाके दवा ले ली, अब क्या है प्रिवेंटिव और प्रोमोटिव हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा जोर है। जैसा कि आपको पता है कि आयुष और योगा पे भी बहुत जोर है, बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अस्पताल हैं जहां नेशनल हेल्थ मिशन के तहत योगा और आयुष के जो बाकी स्ट्रीम्स हैं उनकी भी फैसिलिटी अब दी गई है, जिसकी वजह से जो लोग आयुष सिस्टम से लाभ लेना चाहते हैं उनको भी एक अल्टरनेट स्ट्रीम दी गई है। तो मतलब एलोपैथी प्लस आयुष के स्ट्रीम्स दोनों को पैरेलल चला रहे हैं नेशनल हेल्थ मिशन में। एम्स में भी इनफैक्ट आयुष की अवेलेबिलिटी अब हो गई है। दूसरा, जब आप नेशनल हेल्थ मिशन के तहत स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे तो नेचुरली उसका जो लाभ है वो हर लेवल पर, हर इंडिकेटर में उभरना चाहिए, क्योंकि प्रोग्राम की सक्सेस को मेजर करने का वही एक तरीका है। तो आज जो हमने रिव्यू देखा है कैबिनेट का, उसमें हमने पाया है कि जैसा कि आपने कहा कि ऑलमोस्ट 80% डिक्लाइन 1990 से अगर हम देखें तो मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट में हुआ है, मतलब जो माएं जन्म देते वक्त मर जाती हैं उनकी जो डेथ रेट है उसमें बहुत सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ है। दूसरा, जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसमें बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट थी। इंडिया मतलब पूरे ग्लोबल चार्ट्स में काफी हाई मोर्टेलिटी रखता था, लेकिन उसमें भी एक विजिबल इम्प्रूवमेंट आ रही है अभी, और भी उसमें ठीक करने की जरूरत है। और ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस, जैसा कि आप जानती हैं कि पूरी दुनिया के 25% ट्यूबरकुलोसिस के केसेस भारत में है, तो टीबी इंसिडेंस का रिडक्शन भी बहुत मैटर करता है। तो इंसिडेंस रिड्यूस हुआ है, ऑलमोस्ट 200 लोगों को हर 1 लाख पॉपुलेशन में टीबी हुआ करता था 2015 में, ये अब घटकर ऑलमोस्ट 190 हो गया है। टीबी एलिमिनेशन का गोल अब, लेकिन हम सही रास्ते पर हैं, यही रिव्यू से नजर आता है।
और NHM ने 12 लाख से अधिक एडिशनल हेल्थ केयर वर्कर्स को, जैसा आपने मेंशन भी किया था, 2021 और 24 के बीच में एम्प्लॉय किया ताकि देश के कोने कोने तक ये सर्विसेज पहुंच सकें। इसी संदर्भ में जो निक्षय मित्रा वॉलंटियर्स का जो एक माध्यम अपनाया गया ट्यूबरक्लोसिस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के दिशा में, ये कितना इम्पोर्टेंट है सबको साथ में लेके चलना?
देखिए, निक्षय मित्र का भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था। जब मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री थे, उन्होंने ये लॉन्च किया था, और इसके पीछे यही मंशा थी कि कम्युनिटी मदद के लिए आगे आए। अक्सर क्या होता है कि छोटे छोटे पैसों के लिए ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट्स अपना न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं रखते या कि अपनी दवा नहीं कर सकते वक्त पर। तो एक ऐसा सुझाव आया सरकार में कि एक जना एक टीबी पेशेंट को एडॉप्ट करे। तो जो प्रधानमंत्री मोदी की जन भागीदारी की नीति है बाकी पॉलिसीज में, वो हेल्थ में भी हमने पहली बार लागू होते हुए देखी। हालांकि इसके तहत उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ जितना कि शायद सरकार चाहती थी, लेकिन फिर भी एक अच्छी शुरुआत है। और जैसा कि आपने अभी कहा कि ऑलमोस्ट 1.5 लाख निक्षय मित्र वॉलंटियर्स हैं जो ऑलमोस्ट 9 लाख टीबी पेशेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अडॉप्ट किए हैं टीबी पेशेंट्स और जो उनकी देखरेख और उनकी टीबी में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप रेजिस्टेंस ना बिल्ड होने दें, आप मेडिसिन को टाइम पे लें। अक्सर आपको टीबी इसलिए नहीं ठीक हो पाता क्योंकि लोग मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद जो मेडिसिन की इंटरवल है उसका फॉलो नहीं करते हुए छोड़ देते हैं मेडिसिन लेना। उससे अक्सर क्या होता है, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है और जिस वजह से और भी खतरनाक शेप ले लेता है टीबी। लेकिन जब 1.5 लाख निक्षय मित्र 9 लाख टीबी पेशेंट्स को देख रहे होंगे, उनको एडॉप्ट कर चुके होंगे, तो वो देखेंगे कि वो दवाई भी वक्त पे ले, न्यूट्रिशन भी ठीक से ले, और इस प्रोग्राम के तहत न्यूट्रिशन किट भी दी जाती है टीबी पेशेंट्स को।
जी बिल्कुल, और जैसा आपने भी शुरू में कहा था कि बहुत सारी डिजीजेज हैं जिनको टैकल किया जा रहा है, चाहे वो मलेरिया हो, काला आजार हो, मीजल्स रूबेला हो। प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम के तहत कई लोगों को ये डायलिसिस की सुविधा प्रदान की गई है, और साथ ही नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन जो है वो बहुत सक्सेसफुल रहा है। सो आपको लगता है कि ये टारगेटेड अप्रोच बहुत जरूरी है?
देखिए, हेल्थ में सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि क्या आप बीमारी को वक्त पे पकड़ सकते हैं कि नहीं। कैंसर के का भी यही है कि अगर आप स्क्रीन वक्त पे कर लें, आप उसको हायर स्टेजेस में ना जाने दें, तो फिर भी उसमें बहुत स्कोप रहता है ठीक होने का, क्योंकि अब दवाएं भी उपलब्ध हैं। यही नेशनल सिकल सेल एनीमिया के जो मिशन में यही कामयाबी हासिल की है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सरकार ने, कि करीब 3 करोड़ लोगों को इस दौरान 21 से 24 तक स्क्रीन किया गया है। ज्यादातर हमने देखा है कि सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल पॉपुलेशंस में पाया जाता है, तो एक कैंपेन मोड में, मतलब कैंप्स लगा के ट्राइबल एरियाज में वॉलंटियर्स को भेज के घर घर जाके, तो ये एक बहुत डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है।
जी, लेकिन
नेशनल हेल्थ मिशन के तहत अच्छा काम हुआ है।
डिजिटल हेल्थ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं, डिजिटाइजेशन को भी हेल्थ के लिए भी बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया गया है, यूविन प्लेटफॉर्म जो लॉन्च हुआ या और जो पहल हुई।
बिल्कुल, एक सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म तो ई संजीवनी जो लागू किया गया कि जिससे आप टेली मेडिसिन ऑनलाइन ले सकते हैं, ये कोविड के दौरान लोगों के बहुत काम आया था और ये चल रहा है, अभी स्ट्रेंथन भी हो रहा है। और यूविन तो है ही, जैसे कोविन के प्लेटफॉर्म का प्रोटोटाइप लेते हुए सरकार ने ये डिसाइड किया है कि अब जितने भी न्यूबॉर्न्स हैं उनको ट्रैक करने के लिए एक यूविन प्लेटफॉर्म होगा, ताकि उनकी वैक्सीनेशन शेड्यूल, मतलब कब ड्यू है, वो सिस्टम में खुद ही पॉपअप हो जाए। जो रजिस्टर्ड मदर है जिसका बच्चा है, उसको मैसेज उसके मोबाइल पे चला जाए ताकि वो टीका लगवाने के लिए स्वास्थ्य केंद्र पे आ सके। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदिति जी शामिल होने के लिए और हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपलब्धियों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन, कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।